नमस्कार भारत, तारीख 30 अप्रैल दिन शनिवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। सऊदी अरब में एक बड़ी कंपनी ने निकाले 50,000 कर्मचारी, हजारों भारतीयों का भविष्य भी अधर में।
कई सारे लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान भेज दिए गए हैं, कई सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं चला कि उनके पासपोर्ट से एग्जिट लगा दिया गया है, यानी वो यहाँ पर रुक भी नहीं सकते।
जयपुर के एक पुनर्वास गृह में 11 दिन में 12 मौतें, क्या है वजह?
प्रिलिमरी जो हमें जो अभी तक रिपोर्ट जो लगती है, कंडीशन देख करके जो डॉक्टर्स की ओपिनियन है, उसमें प्रिलिमरी लगता है कि कोई इन्फेक्शन है।
बंगाल में 5वें चरण का मतदान आज, और सरकार ने भविष्य निधि पर ब्याज दर बढ़ाई। होंगी खबरें, खेल की भी, अखबारों की समीक्षा भी, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बिन लादिन समूह ने हजारों कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बाद सऊदी अरब सरकार ने खर्च में कटौती का फैसला किया है, जिसके बाद बिन लादिन समूह ने ये कदम उठाया है। सऊदी अरब के अलवतन अखबार ने बताया है कि करीब 50,000 कर्मचारियों को बिन लादिन समूह ने निकाला है। हालांकि कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जो परिवार इस कंपनी को चलाता है, उसका संबंध चरमपंथी संगठन अलकायदा के मुखिया रहे ओसामा बिन लादेन से था। निर्माण कंपनी बिन लादेन को कई दशकों से सरकार के कई कॉन्ट्रैक्ट हासिल होते रहे हैं। सीरिया में सेना आंशिक और अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गई है। ये युद्ध विराम दमिश्क में 24 घंटे के लिए और लटाकिया प्रांत में 3 दिन के लिए लागू किया जा रहा है। इसमें अलप्पो शहर को नहीं शामिल किया गया है, जिसमें कि पिछले एक हफ्ते की हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना ने कहा है कि ये युद्ध विराम इसलिए लागू कर रहे हैं ताकि चरमपंथियों को हमला करने का बहाना न मिल सके। अमरीका और रूस पर सीरिया में कुछ समय से लागू युद्ध विराम को बचाने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव बना हुआ था। अमरीकी सेना मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान में MSF के अस्पताल पर अमरीकी हवाई हमला युद्ध अपराध नहीं था। अमरीकी सेना के जनरल जोसेफ फोटेल ने कहा कि ये अनजाने में किया गया हमला था, इसलिए युद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पूर्वी अफगानिस्तान के कुंदूस शहर में इस हमले में पिछले साल 42 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के सिलसिले में अमरीकी सेना के 16 सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला किया गया है। मेडिसिन ऑफ फ्रंटियर्स MSF ने हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। ब्रिटेन में MSF की कार्यकारी निदेशक विकी हॉकिंस ने ये बताया।
Medical facilities are protected facilities. In this case,
स्वास्थ्य सुविधाएं सुरक्षित सुविधाएं होती हैं। इस मामले में एक जाना माना अस्पताल जो पूरी तरह सक्रिय था, दुनिया की सबसे आधुनिक सेना के लगातार हमले का शिकार हुआ। हम इसमें स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हमें कभी भी हमले के बारे में ठीक जानकारी नहीं मिल पाएगी और हम कुंदुस जाकर दोबारा काम शुरू नहीं कर पाएंगे। ये थे विकी हॉकिंस के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक 6 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में फंसे कई लोगों की तलाश जारी है। नैरोबी में जबरदस्त बारिश और बाढ़ के बाद यह हादसा हुआ। कीनिया के मीडिया के मुताबिक अब तक कई बच्चों समेत 50 लोगों को जिंदा निकाला गया है। 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बिना पूंछ के एक धूमकेतु की खोज के बारे में जानकारी दी है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं BBC की हिंदी सेवा से कार्यक्रम नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। आज कार्यक्रम की शुरुआत सऊदी अरब से, जहां एक झटके में 50,000 लोगों को नौकरी से निकाले जाने की खबरें मिल रही हैं। ये फैसला है बिन लादिन समूह का, जो सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माना जाता है और उसे दशकों से सऊदी अरब में बड़े बड़े निर्माण ठेके मिलते रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सर्वोच्च धार्मिक स्थल मक्का की मस्जिद के विस्तार का काम भी उसे ही सौंपा गया था, जहाँ पिछले साल सितंबर में क्रेन से एक हादसा बड़ा हादसा हुआ था। बिन लादेन समूह के अध्यक्ष बकर बिन लादेन हैं, जो अलकायदा के पूर्व सरगना ओसामा बिन लादेन के भाई हैं। मैंने फोन लगाया जेद्दा में अरब न्यूज के संपादक सिराज वाहब को और पूछा कि एक कंपनी 50,000 लोगों की छुट्टी कर दे तो इसे क्या समझा जाए, सऊदी अरब की आर्थिक मुश्किलें या इसके पीछे कुछ और वजह है।
देखिए, आपको इसका बैकग्राउंड जानने की बहुत सख्त जरूरत है। असल में इससे आप ये न समझे कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई इकोनॉमिक सूरत हाल खराब है या इनकी इकोनॉमी खराब हुई है सऊदी अरेबिया की। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है सऊदी बिन लादेन ग्रुप, इसमें जो है 2 लाख लोग काम करते हैं और उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के जो लोग हैं, उसमें हिंदुस्तानी भी है, पाकिस्तानी भी है, फिलीपींस के भी है, अमेरिका के भी है, इंडोनेशिया के भी है, मलेशिया के भी है। तो ये कंपनी के साथ असल में मसला ये हुआ है कि ये कंपनी पिछले साल सितंबर में जो क्रेन का हादसा हुआ, यदि वो क्रेन जो सबसे बड़ी मस्जिद है मुसलमानों की मक्का में, उस मस्जिद में जो वो क्रेन गिर गई थी जिसमें 107 लोग जो है शहीद हो गए थे, और गवर्नमेंट ने उसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको ये पता लगा बिन लादेन के इंजीनियर तो बिन लादेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको गिल्टी पाया कि ये वो लोग रिस्पॉन्सिबल थे। तो यहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने बिन लादेन पे रोक लगा दी।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो तेल के गिरते दामों की वजह से सऊदी अरब को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उससे इस मामले का कोई लेना देना नहीं है,
किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। जब हादसा हुआ तो उसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया और वो तमाम सारे लोग जो जिनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया और दूसरी कंपनीज को दे दिया गया। लिहाजा जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे उनमें कई सारे लोगों को 50,000 तो आप कह रहे हैं या रिपोर्ट आ रही है, 50,000 भी बहुत ज्यादा लोग हो सकते हैं, इसलिए कि कंपनी की टोटल स्ट्रेंथ जो है 2 लाख है या 2 लाख थी, अब वो घटकर शायद जो भी कम हुई होगी। तो इसका सऊदी अरब की आर्थिक स्थिति से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, ये बैकग्राउंड आपको ध्यान देना चाहिए।
कोई कंपनी इतने सारे लोगों को अगर निकालती है तो जाहिर है इसमें भारत, पाकिस्तान और कई और देशों के जो कामगार हैं, मजदूर हैं, वो प्रभावित होंगे, तो उनका क्या भविष्य हो सकता है?
नहीं, आपने बहुत सही कहा, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत लोगों पे जो है इसका असर हुआ है और कई सारे हिंदुस्तानी, हम ये समझते हैं पिछले दिनों आज 3-4 महीने पहले यहाँ पर जद्दा में जो हिंदुस्तानी दूतावास जो कॉन्सुलेट है उसमें लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो जो कॉन्सुलेट जनरल हुआ करते थे यहाँ पर, बीएस मुबारक इस वक्त दिल्ली में है, तो उन्होंने कंपनी के आला अफसरान को बुलाया, उन्होंने कहा कि इन लोगों के कोई सेटलमेंट करें। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब जो है गई है, कई सारे लोग ऑलरेडी हिंदुस्तान भेज दिए गए हैं, कई सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं चला कि उनके पासपोर्ट से एग्जिट लगा दिया गया है, यानी वो यहाँ पर रुक भी नहीं सकते। हमारी इत्तला के मुताबिक इस 50,000 के अंदर कम अज कम 3,000 हिंदुस्तानी शामिल है जिनको या तो हिंदुस्तान भेज दिया गया है या आने वाले दिनों में भेज दिया जाएगा।
तो मतलब उनको किसी तरह की राहत की उम्मीद वो ना करें सऊदी अरब की सरकार की तरफ से या कंपनी के जो दफ्तर है उसकी तरफ से, उनकी नौकरी बचाने का कोई तरीका नहीं रह जाता?
नहीं, देखिए, इसलिए कि बिन लादेन कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी में तो जब आप जॉब पे आते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होता है कि जब तक इनके पास प्रोजेक्ट रहेगा आपकी जॉब रहेगी, जिस वक्त प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा आपकी जॉब खत्म हो जाएगी। अब अगर वो हिंदुस्तानियों को इस मार्केट में अगर जॉब मिलती है तो वो दूसरी जॉब पे जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास जॉब अवेलेबल नहीं है तो उनके पास सिवाय हिंदुस्तान अपने घर लौटने के और कोई दूसरे चारेकार नहीं है।
ये थे जिद्दा से वरिष्ठ पत्रकार और अरब न्यूज़ के संपादक सिराज वाहब। इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी अपना बकाया मिलने तक सऊदी अरब छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और अब रुख करते हैं भारत का, जहां अगस्ता वेस्टलैंड के मुद्दे पर संसद से लेकर सियासी गलियारों तक सियासी घमासान जारी है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और उससे 6 सवाल पूछे। उन्होंने कांग्रेस के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि यूपीए सरकार ने न सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड डील रद्द की बल्कि इसके लिए जो पैसे दिए गए थे वो भी वापस ले लिए गए थे। अमित शाह।
कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा है कि सारे पैसे जो बैंक गारंटी के थे वो वापिस आ गए हैं, भारत ने एनकैश कर ली है, वो भी सत्य से परे हैं, पूरे पैसे वापिस नहीं आए हैं, इसका एक ही हिस्सा वापिस आया है। तो इस सारी बातों का जवाब कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए और मैं मानता हूं उन्होंने स्वयं देश की जनता के सामने प्रेस के सामने आकर जवाब देना चाहिए। और मैंने पहले कहा जैसे उल्टा चोर कुटवाल को डांटे उससे अनुरूप अब तो कम से कम शर्म कर ये प्रक्रिया में से कांग्रेस ने बाहर आना चाहिए।
ये थे अमित शाह। दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है और अगर कोई गड़बड़ हुई है तो मोदी सरकार 2 साल से सत्ता में है, उसने क्यों जांच नहीं कराई। हमारे साथी वात्सल्य राय ने इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से बात की।
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय तो हाइट कम थी, जो प्रेस्क्राइब था उसे कम किया गया जिससे कंपनी उसमें किसी तरह शामिल हो सके। ये हुआ था 2003-04 में जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद ये चलता रहा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंथोनी साहब को ऐसा लगा इसमें कहीं ना कहीं रिश्वत आई गई, उन्होंने तुरंत इस सौदे को कैंसिल किया, जो सिक्योरिटी थी फोरफीट किया, क्योंकि उन्होंने एक क्लॉज इसमें ऐड कराया था कि ट्रांसपेरेंसी होगी और कोई अगर बेईमानी होगी तो ये सौदा कैंसिल हो जाएगा। यही नहीं, फोरफीट ही नहीं कर ली, जो 3 हेलीकॉप्टर आए थे उनको भी रख लिया, सारा पेमेंट एक नहीं दिया और CBI इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। इसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी कांग्रेस के टाइम में शुरू हुई, जो जाके में हुई। 2 साल से जब से NDA की सरकार आई चुप के बैठ गए, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि एक सीधा सा सवाल है कि जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट हमने करना शुरू किया था और समय में ब्लैकलिस्ट हुआ था, उसको 1 महीने बाद ब्लैकलिस्टिंग से आउट किसको ने किया। मेरा अमित शाह से सीधा सवाल है, इसके लिए उनको कौन सा फेवर था जिसके बदले उन्हें करना पड़ा है। 6 सवाल नहीं, 1 सवाल, आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फिर से अनलिस्ट क्यों किया।
भारतीय जनता पार्टी का लगातार एक और सवाल है कांग्रेस से कि रिश्वत किसने ली इस सौदे में, उसका नाम बताएं।
CBI इंक्वायरी इसीलिए तो ऑर्डर की गई, रिश्वत किसने दी, किसको दी, ये इन्वेस्टिगेशन ही का विषय तो है ना। और BJP उसको करनी थी, CBI इंक्वायरी तो हमने ऑर्डर, और बिना इंक्वायरी के बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे नेम करेंगे आप।
ये मामला लगातार संसद में भी उठ रहा है, तो अब अगले हफ्ते कांग्रेस किस रणनीति के साथ पार्लियामेंट पहुंचेगी।
हमारा कहना सीधा सा ये है कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। BJP की स्थिति है कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और 5 राज्य, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे तमिलनाडु, चाहे केरल हो, चाहे पांडिचेरी हो, सब जगह BJP को संभावना जो दिख रही है बुरी तरह फंस गए हैं, कहीं नहीं जीत रहे हैं। महंगाई की मार, 15 लाख वाली बात, मोदी जी के दो साल के झूठे वायदे सपने हैं, सब भारी पड़ने, तो उनसे ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। लेकिन सवाल सीधा सा है, सरकार आप हैं, CBI इंक्वायरी ऑर्डर्ड है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते जो दोषी है। मेरा इल्जाम है कि आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप किसी को बचाना चाहते हैं।
ये थे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी वात्सल्य राय।
BBC इंडिया बोल।
देश के कई हिस्सों में बिन पानी हाहाकार, लातूर में नदियां सूखी, लोग बूंद बूंद को तरसे, दूसरी ओर क्रिकेट की पिचों को तर करने के लिए हजारों लीटर पानी बहाया जाए, सूखे और अकाल जैसी स्थितियों के लिए कौन है जिम्मेदार। इस बार इंडिया बोल में आंखें खोलने वाली जानकारी देंगे पानी विशेषज्ञ हिमांशु ठक्कर। कार्यक्रम में अपनी राय जाहिर करने के लिए शनिवार 30 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
तो इंडिया बोल में जरूर शामिल होइएगा। उधर जयपुर में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों और महिलाओं के एक सरकारी कल्याण पुनर्वास गृह में 12 दिन के भीतर 8 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत होने की खबर है। अभी 9 अन्य बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। विपक्ष ने जहां इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है, वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इन मौतों का कारण पता चलेगा। सुनिए जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
इस पुनर्वास गृह में 11 से 35 वर्ष की उम्र के 200 मानसिक विमंडित रहते हैं। सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी के अनुसार प्राथमिक तौर पर मौतों का कारण कोई बैक्टीरियल अथवा अन्य इन्फेक्शन लगता है।
हॉस्टल में 200 बच्चे रहते हैं। 16 तारीख को पहले एक बच्चे की रिपोर्ट हुई जिसको डायरिया हुआ, उल्टी दस्त हुए, इमीडिएटली उसको SMS हॉस्पिटल रेफर किया और 18 तारीख को उसकी डेथ हुई। फिर बच्चों की जैसे होती रही, इमीडिएटली रिपोर्ट आती हमने किया। प्रिलिमरी जो हमें जो अभी तक रिपोर्ट जो लगती है कंडीशन देख करके, जो डॉक्टर्स की ओपिनियन है, उसमें प्रिलिमरी लगता है कि कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कौन सा है, इधर ये हो सकता है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या अदरवाइज कोई इन्फेक्शन हो, ये एक बार ब्लड की रिपोर्ट, यूरिन की रिपोर्ट, कल्चर की रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट आ जाएंगी, तब हम किसी निष्कर्ष पाएंगे डॉक्टर्स के ओपिनियन के बाद कि कौन सा इन्फेक्शन है।
उधर मीडिया के सवालों से परेशान इस पुनर्वास गृह की अधीक्षक अनीता चौधरी ने BBC को कहा कि यदि मौत के कारणों का पता होता तो वे हल भी तुरंत ही कर लेते। नहीं
आप ऐसा कुछ भी नहीं, कारणों का पता चल जाता तो हम कर लेते, हर भी तुरंत कर लेते। हमने CMHO साहब को उनको अधीक्षक देखे, उन्होंने प्राचार्य मेडिकल कॉलेज सबसे लिख के ये सैंपल जांच करवाया, वो रिपोर्ट आई तब पता चलेगा, कारणों का पता चल जाता हम कर देते थे अभी तक तो।
चतुर्वेदी ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि वे किसी को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, पर उन्हें प्रथम दृष्टया कोई लापरवाही नहीं लगती क्योंकि बच्चों की तबीयत बिगड़ते ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति भी गठित की है।
सरकार ने अपनी तरफ से पहले भी यहाँ पर 2 डॉक्टर्स पोस्टेड हैं, 13 नर्सिंग स्टाफ पोस्टेड है, 36 केयर टेकर हैं, 20 सफाई कर्मी हैं, 20 ट्यूटर हैं, 25 सफाई कर्मी हैं, 20 ट्यूटर हैं, जितना हमें रखना चाहिए हमने उसमें समय किया। आज हमने ये और कहा कि एक डिस्पेंसरी वहाँ अभी टाइम बिंग कुछ 15 दिन के लिए वहाँ हमने शिफ्ट कराई, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट से कहा है वहाँ स्पेशली कुछ डॉक्टर्स को एंगेज किया जाए। इसके साथ साथ ही हमने कहा है कि वहाँ कुछ एडिशनल केयर टेकर्स 20 केयर टेकर और बढ़ाएं।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने इस प्रकरण को सरकारी अनदेखी का जीता जागता उदाहरण कहा है, जहां दूषित भोजन एवं पानी से इतने बच्चों की मौत हो गई। उधर महिला एवं जन संगठनों ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सामाजिक अधिकारिता मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। जयपुर से आभा शर्मा।
और उधर पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 53 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडल के 9 सदस्यों की किस्मत भी EVM में कैद हो जाएगी। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता अमिताभ भट्टासाली के पास। तो अमिताभ, अभी तो मतदान शुरू नहीं हुआ है लेकिन हलचल जरूर शुरू हो गई होगी, आप क्या कुछ देख रहे हैं और आज किन किन इलाकों में वोट पड़ेंगे पश्चिम बंगाल में?
बिल्कुल, अभी भी वोट मतदान शुरू नहीं हुआ है, पर जहां तक खबर मिल रही है कोलकाता और दक्षिण 24 परगना हुगली, ये 3 जिलों में के मतदान केंद्रों पे वोटर्स पहुंचने लगे हैं, उनके कतारें दिखने लगे हैं और जो पोलिंग एजेंट्स है वो अंदर जा चुके हैं। मॉक पोलिंग जो होता है मतदान शुरू से पहले वो भी शुरू हो गया है, लगभग तैयार हो गया है, सारे लोग मतदान से जड़ित सारे लोग तैयार बैठे हैं मतदान के लिए। और आपने जो कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर केंद्र से आज चुनावी मैदान में है और उनके मंत्रिमंडल के 9 सदस्य भी आज उनका उनके इलाके में मतदान हो रहा है, और साथ ही साथ विधानसभा की स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चीफ व्हिप, इनका भी आज इनके इलाके में भी आज मतदान हो रहा है।
तो आप 53 सीटें हैं आज के चरण में, कितना अहम मान रहे हैं इन सीटों को और क्या कुछ समीकरण इन पर हैं, सियासी समीकरण? कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां मुख्य तौर पर मैदान में हैं, मुकाबले में हैं?
ये एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस है ही है जो सत्तारूढ़ दल है यहाँ के, और ममता बनर्जी और उनके लगभग सारे बड़े लीडर आज चुनावी मैदान में हैं, और दूसरी तरफ है CPIM और कांग्रेस की जो गठबंधन हुई है, सीट एडजस्टमेंट हुई है वो है, और BJP भी यहाँ आशा कर रही है कि वहाँ खास करके शहरी क्षेत्र में, कोलकाता शहरी क्षेत्र में उनको वोट मिलने का आशा है।
जी, भाजपा को लेकर ही असल में मेरा सवाल था, इन सीटों पर कितनी मजबूती आपको दिख रही है भाजपा की?
एक आंकड़ा, अगर आंकड़े के और अगर हम देखते हैं तो ममता बनर्जी की जो सीट है भवानीपुर, इसमें पिछले 2014 की जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहाँ भले ही बहुत ही कम, लगभग 150 वोट से तृणमूल कांग्रेस पीछे था, तो इसीलिए भाजपा अभी उस इलाके में कुछ दिखाने का आशा कर रही है। पर ये भी खास एक पॉइंट है कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो कांग्रेस और सीपीआईएम गठबंधन की उम्मीदवार है दीपा दास मुंशी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी है, वो भी चुनावी मैदान में है और वो वहाँ उस इलाके में काफी पॉपुलर भी है।
और चंद्र बोस भी मैदान में है ममता बनर्जी के खिलाफ आज। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ भट्टासाली इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं वापस दिल्ली की तरफ। चौतरफा विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ा दी है। पहले साल 2015-16 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.7% तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 8.8% कर दिया गया है। ब्याज दर में कटौती का मजदूर संगठन विरोध कर रहे थे, अब सरकार के फैसले के बाद उन्होंने इसका स्वागत किया है। एक रिपोर्ट के साथ प्रभात पांडे।
ईपीएफ ब्याज दर में कटौती को लेकर मजदूर संगठनों और विपक्ष के निशाने पर आई केंद्र सरकार ने ब्याज दर में इजाफा कर दिया है। अब साल 2015-16 में ईपीएफ पर 8.8% की दर से ब्याज मिलेगा। पहले ब्याज दर 8.7% निर्धारित की गई थी। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, कर्मचारी 8.95% ब्याज दर की मांग कर रहे थे, हमने 8.8% ब्याज दर निर्धारित की है। मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने इसका स्वागत किया है। ये थे बंडारू दत्तात्रेय के शब्द। ईपीएफ के ब्याज दर में कटौती का देश भर के मजदूर संगठन विरोध कर रहे थे। विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। ब्याज दर में इजाफे के बाद आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि नौकरशाही के गलत फैसलों की वजह से सरकार को बार बार कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। संघ के महासचिव व्रजेश उपाध्याय ने कहा,
अच्छा कदम उठाया, हमने थैंक्स कहा है प्रधानमंत्री को भी, वित्त मंत्री को भी, लेबर मिनिस्टर को भी। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर इस सारे मामले को सचमुच नहीं समझ पा रहे या इरादतन नहीं समझना चाह रहे, ये मुझे कहना बड़ा मुश्किल है, बट ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार फैसला लेते हैं, रोल बैक करना पड़ता है।
उधर आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्याज दर में कटौती के दौर में सरकार के लिए ये फैसला मुश्किल भरा रहा होगा। हालांकि आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल कहते हैं कि फिलहाल सरकार इस बोझ को उठाने की स्थिति में है।
ऑलरेडी हमारे डेफिसिट में रिडक्शन होने की यानी सरकारी घाटे में कमी रहने की उम्मीद है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था वो सरकार की अभी भी फेवर में है। तो ऐसे में सरकार इस फाइनेंशियल कैपेसिटी में थी कि इम्प्लॉयज को वो बेनिफिट पास ऑन कर सके, और जिस तरीके से पिछले 2 महीने से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की प्रपोजल आई है, तो अगले साल इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होने की उम्मीद है। दूसरे एंगल से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन ये आती है कि एक तरफ तो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं इकोनॉमी में, दूसरी तरफ ईपीएफ पे एक हाई रेट दिया जा रहा है, बट ओवरऑल देखें तो आई थिंक पल्ला एम्प्लॉयज की तरफ झुकना चाहिए जिनको कुछ रिलीफ की रिक्वायरमेंट।
केंद्र सरकार को इस साल ईपीएफ को लेकर पहले भी अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा था। सरकार ने इससे पहले ईपीएफ निकासी पर कर लगाने के प्रस्ताव को वापस लिया था।
ये थे प्रभात पांडे, आपको रिपोर्ट सुना रहे थे कि सरकार ने ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर अब 8.8% कर दिया है। और अब बारी कार्यक्रम में अखबारों की। आज के अखबार में क्या कुछ छपा है, हरिता मौजूद है हमारे साथ। हरिता, क्या कह रहे हैं अखबार? गुजरात की खबर प्रमुखता से दिख रही है।
जी, सबसे पहले मैं इस खबर का जिक्र करती हूँ। गुजरात में 6 लाख आय वाले सवर्णों को 10% आरक्षण।
अगले कार्यक्रम में रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं।
जी, पटेल आंदोलन का असर, शाह की मौजूदगी में राज्य सरकार की घोषणा, नई दुनिया के पहले पन्ने पर प्रमुखता से ये खबर छपी है। हालांकि हार्दिक पटेल के संगठन जो पटेल अनामत आंदोलन समिति पास ने इसने इस फॉर्मूले को खारिज कर दिया और कहा है कि ये घोषणा लॉली पॉप के सिवा कुछ भी नहीं है।
जी,
तो ये खबर है। इसके अलावा जनसत्ता और तमाम अखबारों ने एक और खबर को प्रमुखता से छापा है। आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने का आदेश दिया है, अपील के लिए मिला 3 महीने का वक्त। करगिल में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की मदद के लिए ये इमारत बनी थी और इसमें कहा गया था कि निर्माण के नियमों में जमकर इसका उल्लंघन हुआ है, तो आखिरकार जो है अदालत ने इसको गिराने का आदेश दे दिया। एक और खबर जिस पर मैं सबका ध्यान खींचना चाहूंगी, सभी अखबारों ने इसे बड़ी प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर और जनसत्ता दोनों ने इस पर खबर छापी। कोयला आवंटन मामला, साजिश में कांग्रेसी नेता नवीन जिंदल की मुख्य भूमिका, कोर्ट ने यह कहा है। और इसके अलावा जिंदल, मधुकोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव सहित 15 पर आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। और नवीन जिंदल ने कहा है कि जिंदल स्टील ने कहा है कि किसी भी गड़बड़ी नहीं की है, हमने कोई गड़बड़ी, उन्होंने इस आरोप से इनकार किया है।
सभी राजनेता जो फंसते हैं वो ऐसा ही करते हैं। खैर, अदालत को फैसला करना है कि कौन दोषी है।
जी, इसके अलावा एक अगस्ता वेस्टलैंड मामले में प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगा था कि उन्होंने इटली के साथ कोई डील की है, तो सरकार ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री की सफलता नहीं देख सकते हैं वो ही जो है प्रधानमंत्री पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, और सरकार और इटली के बीच में कोई डील नहीं हुई है।
लाइन के मुताबिक रुके
जी जी, द स्टेट्समैन अखबार, अंग्रेजी अखबार ने एक छोटी सी खबर लिखी है, गवर्नमेंट टू बिल्ड नेताजी मेमोरियल। कल ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 25 फाइलें जो हैं वो
सार्वजनिक
की गई हैं, और पिछले कुछ महीनों से ये सिलसिला जारी है। तो इसमें एक और घोषणा की गई कि नेताजी का एक मेमोरियल बनाया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है हमारे पास, हालांकि आपके पास अखबार बहुत हैं, खबरें बहुत हैं, तो अभी के लिए हम चलते हैं खेलों की तरफ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल 9 में कल पुणे में खेले गए बेहद रोमांचक मैच में गुजरात लायंस ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल रही राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को जीत के पंजे में दबोचा और 3 विकेट से मात दी। पूरे मुकाबले के दौरान बेहद उतार चढ़ाव देखने को मिले। पहले तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पुणे ने स्टीव स्मिथ के 101 और सलामी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के 53 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 195 रनों जैसा विशाल स्कोर बनाया, और बाद में जीत के लिए 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने भी आखिरी 2 ओवर में 4 विकेट खो दिए। लेकिन जेम्स फॉकनर के संघर्षपूर्ण 5 गेंदों पर बनाए गए नाबाद 9 रन निर्णायक साबित हुए। वैसे गुजरात के ड्वेन स्मिथ ने 63, ब्रेंडन मैकुलम ने 43, कप्तान सुरेश रैना ने 34 और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने भी 32 रनों का योगदान दिया। आज आईपीएल 9 में दिल्ली डेयरडेविल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से और सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। उधर चीन के वुहान शहर में आयोजित एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में 5वीं वरीयता हासिल और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारत की साइना नेहवाल ने कल क्वार्टर फाइनल में 3री वरीयता हासिल। चीन की वांग शिजियान को 56 मिनट के संघर्ष के बाद 21-16, 21-19 से मात दी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। साइना नेहवाल ने दूसरे गेम में जीत हासिल करने के लिए खासी मेहनत की, लेकिन उन्होंने अपने शॉट्स पर नियंत्रण रखा और वांग शिजियान को वापसी का कोई अवसर नहीं दिया। वहीं शंघाई में जारी तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारत की रिकर्व महिला टीम ने कल शीर्ष वरीयता हासिल टीम जर्मनी को 5-3 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अब स्वर्ण पदक के लिए भारतीय टीम का सामना चीन ताइपे से होगा। भारत की दीपिका कुमारी, लैशराम मोम्बालिया देवी और लक्ष्मी रानी मांझी ने जर्मनी की खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी। वहीं दूसरी तरफ 7वीं वरीयता हासिल चीनी ताइपे ने भी सही निशाने लगाते हुए अपने से ऊंची रैंकिंग वाली रूसी टीम को 6-0 से मात देते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की की।
और खेलों की खबरों के बाद एक बार फिर मुख्य समाचारों की बारी।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बिन लादिन समूह ने हजारों कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। सीरिया में सेना आंशिक और अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गई है। ये युद्ध विराम दमिश्क में 24 घंटे के लिए और लटाकिया प्रांत में 3 दिन के लिए लागू किया जा रहा है। इसमें अलप्पो शहर को शामिल नहीं किया गया है, जहां पिछले एक हफ्ते की हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमरीकी सेना मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अफगानिस्तान में स्वास्थ्य संगठन MSF के अस्पताल पर पिछले साल हुए अमरीकी हमला युद्ध अपराध नहीं था। MSF ने हमले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। कीनिया की राजधानी नैरोबी में एक 6-मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। वैज्ञानिकों ने बिना पूंछ वाले सबसे पहले धूमकेतु की खोज के बारे में जानकारी दी है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे सौर मंडल के बारे में नई जानकारियां हासिल होंगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। ठीक एक घंटे बाद आपसे मिलने वाले हैं। कार्यक्रम होगा विश्व भारती, कुछ नई रिपोर्टों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अशोक कुमार को अभी अनुमति दें। नमस्कार।